ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजा में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग बातचीत में श्री मोदी ने भारत का ये रुख दोहराया कि रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी हाल की रूस यात्रा दोनों देशों के बीच सामंजस्य और गहरी मित्रता दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि कजा में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोले जाने से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने दूतावास खोलने के भारत के फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स ने 15 वर्षों में अपनी विशेष पहचान बनाई है और अब दुनिया के कई देश इस समूह में शामिल होने के इच्छुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय ने विश्व भर में अपने महत्वपूर्ण योगदान से प्रतिष्ठा हासिल की है। कजा में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता देखकर उन्हें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री कल से शुरू हो रहे 2 दिन के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजा गए हैं। सम्मेलन का विषय है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा। भारत और सिंगापुर विशेष रूप से स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशेष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंगहेन ने आज नई दिल्ली में 6वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वे संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पर द्विपक्षीय समझौते को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने पर भी राजी हुए हैं। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज है। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए कानूनों का मसौदा तैयार करने में विधायी स्पष्टता के महत्व पर बल दिया है। गांधीनगर में श्री शाह ने कहा कि प्रारूप में जितनी अधिक अस्पष्टता होगी न्यायिक व्याख्या की गुंजाइश उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट और दोष रहित कानून न केवल इसके कार्यान्वयन में बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में भी सहायता करता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के 4G नेटवर्क की शुरुआत के बाद से ग्राहकों की संख्या पिछले 6 महीनों में 75 लाख से बढ़कर 1,80,00,000 हो गई है। आज नई दिल्ली में BSNL के नए प्रतीक चिन्ह और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपना 4G नेटवर्क विकसित किया है और जल्द ही इसे 5G नेटवर्क में बदला जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2023 पर संसद की संयुक्त समिति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को समिति की बैठक में भाग लेने से 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। ये निर्णय संसद भवन में समिति की बैठक के दौरान उनके अभद्र व्यवहार के बाद लिया गया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के 2रे चरण की और महाराष्ट्र में 1 चरण में होने वाले चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई। नामांकन पत्र 29 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। झारखंड में इस चरण में 38 सीटों पर और महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवम्बर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवम्बर को होगी। जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं को तकनीकी कौशल देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार शुरू करने में सुविधा प्रदान करेगी। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात के कारण ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। चक्रवात बालेश्वर के पास बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात ओडिशा तट और केंद्रपाड़ा में भद्रक या भीतर कनिका के से टकराने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।